हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 15। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंगस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्तो महा श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमिदं तत्रादर न परः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतुमेतदेव गोविन्द दामो दरमाधवेति। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकूलतोरं। श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गु लङ्घयति गिरं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद्भागवतम आठवां स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 15। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। गजेंद्र भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, नमो नमस्ते खिल कारणाय
निष्कारणायाद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पवरिकाय परायणाय नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पवरिकाय परायणाय नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पवरिकाय परायणाय
शब्दात नमो नमस्ते अर्थात मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमो कहने से उसने कह दिया नमस्कार करता हूँ, और फिर नमः, नमः का मतलब होता है पुनः नमस्कार करता हूँ। अर्थात आप इतने विशाल हैं, आप इतने महान हैं कि आपको सैकड़ों बार सहस्रों बार नमस्कार है मेरा, कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि अखिल कारण आया, क्योंकि आप हर वस्तु के आदि कारण हैं। इस संसार में जो अखिल का मतलब होता है संपूर्ण, खिल का मतलब होता है अपूर्ण, और अखिल यानी जितना कुछ इस संसार में, सारे विश्व में, सारी त्रिलोकी में जो कुछ भी है उस सब का कारण भगवान है। यानी कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, चाहे वो ब्रह्मा हो, शिव हो, बड़े बड़े देवी देवता हो, चाहे वो कोई आध्यात्मिक वस्तु या व्यक्ति हो, या भौतिक वस्तु पदार्थ या फिर भौतिक व्यक्ति हो, 84 लाख योनियों में कोई भी हो, या बड़े से बड़ा कोई महान पुरुष हो, जो कुछ भी हो, परंतु उस सब का वास्तविक आदि कारण भगवान ही है। भगवान हर एक वस्तु के कारण है, स्रोत है, उद्गम है। इसलिए गजेंद्र भगवान को कह रहे हैं, क्योंकि हर एक वस्तु के आदि कारण आप हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। और आगे भगवान की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं, निष्कारणाया, आप तो संपूर्ण वस्तुओं के, संपूर्ण जीवों के, संपूर्ण लोकों के कारण हैं, परंतु निष्कारणाया, आपका कोई कारण नहीं, आपका कोई आदि नहीं, आप किसी, कोई आपका स्रोत नहीं है, आपसे पहले कोई नहीं था, आप सबके आदि हैं, आपका कोई कारण हो ही कैसे सकता है। आगे कह रहे हैं, निष्कारणायाद्भुत कारणाय, फिर अद्भुत कारणाय, परंतु निष्कारण मतलब आप इस प्रकार से, आपका कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी आप समस्त वस्तुओं के कारण हैं। अब आप इतने अद्भुत कारण हैं, अद्भुत कारण का मतलब है हर वस्तु की अद्भुत, आश्चर्य कैसा आश्चर्य, ये है कि जब भी किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो उसके अंदर जरूर कमी हो जाती है कोई ना कोई। जैसे अगर मट्टी से घड़े बनते हैं, ठीक है, घड़े का कारण मट्टी है, लेकिन मट्टी जब घड़े के स्वरूप में आ जाती है तो अपना वास्तविक अस्तित्व खो देती है ना, फिर वो वापस से मट्टी नहीं रह जाती, वो घड़ा बन जाती है। उसी प्रकार फर्नीचर जो भी होता है, दरवाजे, चेयर्स वगैरह, वो सब किसे बनती है, लकड़ी से बनती है, वृक्ष से बनती है। लेकिन जिस वृक्ष से आपने दरवाजा बनाया या फर्नीचर बनाया वो वास्तविक अपनी स्थिति खो, ऐसा नहीं है कि वृक्ष ऐसे का ऐसा रहेगा और आप उसमें से फर्नीचर वगैरह बनाते, नहीं, उसको काटना पड़ेगा, उसको क्षय, उसका लय आएगा उसके अंदर, वो खुद समाप्त होके कोई चीज बनाता है। जिस तरह से हम बीज वृक्ष जो है वो बीज से उगता है, परंतु बीज को खुद को समाप्त करना पड़ता है, है ना। जो बीज हम धरती में डालते हैं, भले ही उसमें से करोड़ों बीज निकले, परंतु वो वाला बीज तो समाप्त होता है। लेकिन भगवान ऐसे हैं, अद्भुत कारण आए, वो अद्भुत हैं, वो स्वयं ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उनके अंदर कभी कोई चेंजिंग नहीं आती है, वो अन्य अद्भुत कारणों के अद्भुत कारण हैं, वो अनादिकाल से हैं। भगवान की शक्ति, भगवान का वैभव, भगवान की सुंदरता, भगवान का ऐश्वर्य कभी कम नहीं होता। वो एज इट इज है, जब से भगवान हैं, भगवान आदि हैं, अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन तब से ही वो ऐसे कैसे हैं, उनके अंदर कोई कमी नहीं आती, लेकिन उनमें से करोड़ों दफा कायनाते निकलती हैं, करोड़ों दफा ये संसार की सृष्टि होती है, सृजन होता है, लय होता है, सब कुछ होता रहता है, परंतु भगवान इतने अद्भुत हैं कि वो ऐसा सब करते हुए भी स्वयं एज इट इज बने रहते हैं। इसको बोलते हैं इटर्नल, सच्चित आनंद है भगवान, शाश्वत है, अनादि है। और आगे कहते हैं सर्वागमनाय अगम अनामनाय। अगम कहते हैं जो वेद शास्त्र होते हैं उनको बोलते हैं अगम, जो वैदिक वाङ्मय है, और आमनाय कहते हैं जो नारद पंचरात्रीय जो विधि है जिसको जिसके द्वारा भगवान की सेवा की जाए। मतलब जितने भी वेद हैं, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वो सब किस प्रकार से भगवान की भक्ति करने के लिए बताते हैं, वो सब क्या है, महाअर्णवाय। महाअर्णवाय मतलब बाकी सारे जितने भी शास्त्र हैं, वैदिक नारद पंचरात्र है, विधि है, या जो कुछ भी है, उन सब के आप आश्रय हो। आप आश्रय हो मतलब उन सब के अर्णव कहते हैं समुद्र को, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेद और पंचरात्र सब नदियों की बातें हैं, और भगवान कैसे हैं, महाअर्णव। अर्णव मतलब समुद्र की, जिस प्रकार सारी नदियां चारों तरफ से बहती 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 समुद्र में आती हैं, उसी तरह सारे उपनिषद, सारे वेद, सब कोई केवल जो कुछ भी इतना विशाल विशाल ज्ञान उसके अंदर होता है, उस सब का वास्तविक उद्देश्य क्या है, भगवान की स्तुति करना, और भगवान के विषय में ही वर्णन करते रहे। वेदों का, शास्त्रों का और कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। शास्त्र सारे भगवान स्वयं कहते 15.15 में कि वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, समस्त वेदों के द्वारा यदि कुछ जानने का लक्ष्य है तो वो केवल मैं हूँ। तो सारे शास्त्रों का एक ही अभिप्राय है कि भगवान की शरण में जाए। जीव भगवान का अंश है और जीव तभी संतुष्ट हो सकता है जब भगवान से प्रेम करता है, भगवान की शरण में जाता है, भगवान को सरेंडर करता है, और वही शरणागति की विधि सिखा रहे हैं। गजेंद्र कहते हैं नमो नमस्ते। वास्तव में जो नमो शब्द है ना, उसका मतलब ये कि मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ, मैं आपको आपकी शरणागति हूँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जितने भी शास्त्र और वेद है वो हमें सब यही सिखाते हैं, और आगे कहते नमो पवर्गाय पराय। नमो पवर्गाय, अपवर्ग मतलब जो स्वयं अपवर्ग प्रदान करते हैं, या फिर जो केवल वही हैं जो अपवर्ग दे। अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष, मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक जीव का लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना है। जीव का लक्ष्य जो है वो भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके आनंद होने का नहीं। जीव यदि बुद्धि से कार्य करता है तो फिर उसका पता चल जाए। अब यहाँ पर कहा नमो अपवर्गाय परायणाय। परायणाय मतलब जो श्रेष्ठ है, आरणाय का मतलब होता है आश्रय, उनकी मंजिल। किन की मंजिल? पर जो श्रेष्ठ हैं, जो वास्तव में ज्ञानी हैं, जो वास्तव में अपने जीवन के लक्ष्य को जानते हैं, वो भौतिक वस्तु नहीं चाहते, वो इस भौतिक जगत में आना। पावर्ग कहा गया, जैसे मैंने पहले बताया था, इस भौतिक जगत में क्या है, केवल परिश्रम है, दुख है, भय है और मृत्यु। ये जीवन केवल इन्हीं भौतिक वस्तुओं के द्वारा दुखी होता रहता है, परंतु वास्तविक जो ज्ञानी है वो इस भौतिक जगत के अंदर रहकर सुखी नहीं होना चाहते, वो पवर्ग में जाना चाहते हैं, जहां पर कोई भय नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं, वहां पर इटर्नल जगत है, वहां पर शाश्वत आनंद है। तो जो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है वो यही सोचेगा ना कि मैं शाश्वत आनंद की जगह पे जाऊं, वो ये तो नहीं सोचेगा मैं स्वर्ग में जाऊं, पुनः फिर क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम, इस मृत्यु लोक में आकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर को भोगूं, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को भोगूं, ऐसा तो नहीं चाहेगा। तो ये पर शब्द बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो वास्तव में जो पर है, जो श्रेष्ठ है, वो केवल आपकी ही भक्ति करते हैं, आपके ही आश्रय हैं। मतलब भगवान इतने मधुर हैं, इतने महान हैं कि जो वास्तव में श्रेष्ठ लोग हैं उनका चित भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु में जाता ही नहीं है। ये तो हम जैसे नीच लोग होते हैं जिनकी बुद्धि इतनी कंडम है, जो हम भौतिक वस्तु और भौतिक व्यक्तियों के पीछे पड़े होते हैं कि शायद उससे आनंद मिल जाए, शायद इसके साथ से आनंद मिल जाए, शायद उसको प्राप्त करने से आनंद मिल जाए। तो क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत ही कंडम है, हम वास्तविक आनंद के विषय में सोच नहीं सकते हैं, हम हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, तो हम इसलिए भौतिक वस्तु और व्यक्तियों के पीछे लगकर उनमें आनंद ढूंढते हैं, लेकिन आनंद है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर बताया नमो पवर्गाय परा, जो वास्तविक आनंद को, आनंद के स्थान को जानते हैं, पवर्ग को जानते हैं, जो पर श्रेष्ठ जीव है, उनका चित्त तो केवल आपके श्री चरणों में लगा रहता, वो तो कहीं पर भी नहीं जाता। तो वास्तविक जो बुद्धिमान है उनमें जैसे शिव जी हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, जैसे नारद हैं, वेद व्यासी हैं, बड़े बड़े महान जितने भी संत हैं, उन सबको यदि देखा जाए, प्रहलाद है, दुरु महाराज हैं, और महाराज अमरीश, षड गोस्वामी और हरिदास ठाकुर, जितने भी महान जीव हैं, महान जितने भी आध्यात्मिक पर हैं, उनका आयन, उनका आश्रय केवल और केवल भगवान है। तो भगवान को वो कह रहे हैं, हे भगवान, क्योंकि आप समस्त जीवों के आदि कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है, आप अद्भुत कार्य करने वाले हैं, अद्भुत कारणों के कारण हैं, और समस्त वेदों और शास्त्रों का एक ही अभिप्राय है कि आपकी शरण में जीव जाए, और जो वास्तविक श्रेष्ठ हैं, जो वास्तव में जीव अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जानते हैं, उनका आश्रय केवल आप ही हैं, इसीलिए मैं आपको समर्पण करता हूँ, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अनुवाद, हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण हैं, किंतु आपका अपना कोई कारण नहीं है, अतएव आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं। मैं आपको अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। आप पंचरात्र तथा शास्त्रों में निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं, जो आपके ही साक्षात स्वरूप हैं और परंपरा पद्धति के स्तोत्र हैं, परंपरा पद्धति के स्रोत हैं। चूंकि मोक्ष प्रदाता आप ही हैं, अतएव आप ही आध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर भगवान को अद्भुत कारण कहा गया है, वे सब बात में अद्भुत हैं कि उनसे असंख्य वस्तुएं उद्भूत होने पर भी जन्मादस्य यतः,
जो कुछ भी संसार में है, जिसका जन्म हुआ है, जिसका लय होता है, जिसका यहाँ पर जो संसार में जिनका पालन हो रहा है, वो सारा कार्य भगवान कर रहे हैं। वे पूर्ण फिर भी बने रहते हैं, वो कभी भी उनके अंदर कोई कमी नहीं आती। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि हमारे बैंक खाते में $10,00,000 हो, तो हम ज्यों ज्यों धन निकालते जाते हैं, त्यों त्यों बैंक की रकम घटती जाती है और अंत में वह शून्य हो जाती है। किंतु भगवान इतने पूर्ण हैं कि यदि उनके असंख्य विस्तार हो जाएं, तो भी वे वही भगवान बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। इसलिए वे अद्भुत कारण हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम नमामि। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम्। अर्थात गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर शाश्वत है, आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम हैं, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे सभी कारणों के आदि कारण हैं। ब्रह्म संहिता 5.1। इस भौतिक जगत से भी हम समझ सकते हैं कि सूर्य लाखों वर्षों से अस्तित्व में है और ऊष्मा तथा प्रकाश देता रहा है, फिर भी उसकी वही शक्ति बनी रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो फिर उस परम कारण परम ब्रह्म कृष्ण के विषय में क्या कहा जाए? उनसे हर वस्तु निरंतर उद्भूत होती रहती है, फिर भी वे मूल स्वरूप सच्चित आनंद विग्रह बने रहते हैं। कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता 10.8 में कहते हैं, मत्तः सर्वं प्रवर्तते। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते। में संसार में जो कुछ भी है, चाहे जितना आध्यात्मिक है या भौतिक है, वो सब अहम सर्वस्य प्रभु, उस सबका प्रभु, उस सबका पालने वाला, उस सबका उद्गम, उस सबका आधार में हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते। सब कुछ मुझसे आया है, मुझसे ही हर एक वस्तु उद्भूत हुई है। हर वस्तु कृष्ण से निरंतर उद्भूत होती है, तो भी वही कृष्ण बने रहते हैं और बदलते नहीं। अतएव वे उन समस्त आध्यात्मिक माध्यमों के आश्रय हैं जो भवबंधन से छूटने के इच्छुक हैं। हर एक को कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, इसीलिए सलाह दी गई है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकाम, अकाम मतलब यदि कोई निष्काम हो, उसके अंदर कोई कामना ना हो। सर्व कामो वा, सर्व कामो मतलब अगर कोई ऐसा हो जिसके अंदर हर एक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, ये भी प्राप्त करना है, धन भी चाहिए, अच्छी स्त्री भी चाहिए, संतान भी चाहिए, घर भी चाहिए, घर हर एक सर्व काम हुआ। और मोक्ष काम, या फिर कोई यदि मोक्ष चाहता है, यानी ब्रह्म में भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहता है, तीव्रेण भक्ति योगेन, फिर भी बुद्धिमान वही है जो उसको क्या करना चाहिए, पुरुष भक्ति योग में लगना चाहिए। क्योंकि जब वो भगवान की शरण में आ जाएगा, भगवान की भक्ति करेगा, भगवान का पवित्र नाम का जप करेगा, भगवान की कथाओं को श्रवण करेगा, तो खुद ब खुद उसे बुद्धि आ जाएगी उसे, कि मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए, काम रहना चाहिए, सर्व काम होना चाहिए, या मोक्ष काम होना चाहिए, क्या कैसा होना चाहिए। भले ही तुम किसी भी स्टेज पे हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे ना भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हो, चाहे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, चाहे कुछ नहीं चाहते हो, कुछ भी हो, लेकिन भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की शरण में आकर ही जीव का कल्याण संभव है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, चाहे कोई सकाम हो या निष्काम, या फिर भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहता है, वह तभी बुद्धिमान कहा जाएगा जब वह दिव्य प्रेम भक्ति करके भगवान कृष्ण की पूजा करता हो। श्रीमद् भागवतम 2.3.10। कृष्ण परम ब्रह्म तथा परम धाम है। अतएव कुछ भी चाहने वाले को, चाहे वह कर्मी हो, ज्ञानी हो या योगी हो, गंभीरता पूर्वक भगवान की अनुभूति करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकेंगी। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तस्तथैव भजामि हम। जीव जिस प्रकार से मेरी शरण में आते हैं उन्हें मैं उसी प्रकार पुरस्कृत करता हूँ। यहाँ तक कि कर्मी भी भगवान से हर मनवांछित वस्तु प्राप्त कर सकता है। कृष्ण के लिए इच्छित वस्तु की प्राप्ति करना तनिक भी कठिन नहीं है, किंतु मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी आवश्यक है, क्योंकि मुक्ति और कोई नहीं दे सकता। भौतिक वस्तुओं के लिए हम किसी भी देवी देवताओं के पास जा सकते हैं, परंतु जो वास्तव में बुद्धिमान है, जो ये जान गया है कि भौतिक वस्तुएं कभी भी कंटिन्यूअस मेरे साथ नहीं रहती हैं, और जितनी भी वस्तुएं हम प्राप्त करते हैं तो इनडायरेक्टली वो हमारे दुख का ही कारण बनती हैं, तो जिसके पास बुद्धि है उसे क्या करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बोलते, जीव वास्तव में बुद्धिमान तभी कहा जाएगा जब वो भगवान की प्रेमा भक्ति करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, क्योंकि सारे शास्त्रों का, सारे वेदों का यही अभिप्राय है। श्री प्रभुपाद जी कहते, वैदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। मनुष्य को चाहिए कि वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण को समझे, क्योंकि समस्त वेदों को के का वास्तविक लक्ष्य कृष्ण को समझना है, जैसा कि यहाँ पर पुष्टि की गई है। सर्वागमनाय महाणवाय, वे समुद्र के तुल्य हैं और सारा वैदिक ज्ञान उन्हीं की ओर प्रवाहित होता है। अतएव बुद्धिमान आध्यात्मवादी भगवान ही की शरण ग्रहण करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे जितने भी धर्म हैं उनको त्याग कर केवल भगवान श्री कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, यही परम लक्ष्य है। तो आज गजेंद्र समस्त लक्ष्य, जितने भी उनके धर्म है, सबको त्याग कर भगवान की शरण में आया है और भगवान को कहता है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए, मुझे भवबंधन से छुटकारा दिलाइए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे संरक्षण प्रदान कीजिए। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यही वास्तविक लक्ष्य है, अर्थात हमें सीखना चाहिए, चाहे हमें कुछ भी चाहिए या हमारी कोई भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता हो, या फिर इतने बुद्धिमान बन गए हैं कि अब समझ गए हैं कि भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों से कभी आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है, तो यदि हम भगवान में लीन होना चाहते हैं या कोई भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्राप्त करना चाहता है, तो करना क्या है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना है, इसी से हमारी समस्त मनोकामनाएं, समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार स्टार्ट से पढ़ेंगे, कृपया साथ दीजिएगा। श्री बादरायणी रुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समादाय मनोवृद्धि जजाप परमं जाप्यं प्राक्चन्मन्यनुशिक्षितम्। श्री गजेन्द्र उवाच, ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदम् येनेदं यैदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत् तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु माम परात् पर। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारिभिराजति विभु न तस्य देवा ऋषय पदं विदु जन्तु पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानो क्रमण समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनय सुसाधव चरन्त्यलोक व्रतमुव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृद समीगति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोका ययसंभवायया स्वमायया तान् यनुकालमिच्छति तस्मै नमः परीशाय ब्रह्मणेनन्तशक्तये अरूपायोयुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणि नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च क्षित्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पवरिकाय परायणाय। हरे कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।